चलिए अगले पे ले जाती हूँ, एक और अंदाज देखते हैं फॉरगिवनेस का, यह है सफ़ख़न। और इसके लिए आयत आपके सामने सूरत हिजर की 85 है, वइन्नस्सातलातियतुन फस्फहिस्सफ़हल जमील, और क़यामत तो ज़रूर आकर रहेगी, तो तुम इन लोगों से अच्छी तरह से दरगुजर करो। मैंने इसका एक कोड वर्ड अपनी जबान में रखा हुआ, पहले तो वही दे दूँ, सफ़ा पलट दो। सफ़ जो होता है ना, स्वाद वाहा। अब ये भी लफ्ज़ देख लीजिए क्या है, उर्दू में बोलते हैं सफ़ा, सफ़ा पलटो, वही लफ्ज़ है। और इसी तरह से आप देखिए कि हथेली का अंदर का हिस्सा होता है ना, मेट, जो ज़रा थोड़ा सा गहरा होता है, इसको सफ़ कहते हैं। चलिए लफ्ज़ याद करें, हम मुसाफहा बोलते हैं जी, शेक हैंड, मुसाफहा भी यही लफ्ज़ है, स्वात फा हा से ये लफ्ज़ है। हथेली का हथेली से मिलना या मिलाना, इसको मुसाफहा कहते हैं। अब स्वात फा हा के लफ्ज़ से सफ़ुन के आ गया, तो एक तो मैं जुमला बोल गई हूँ, दोबारा ही बोल देती हूँ, सफ़ा पलट दो। जिंदगी के सफ़र में पीछे ही मुड़ मुड़ के ना देखो, डोंट लुक एट बैक मिरर ऑल द टाइम। ये कौन सी माफ़ी है, अब समझिए, अपने इंसानी मामलात में 10 साल पहले बात हुई थी, आपको आज भी याद है? रिश्ता टूटा फिर दोनों का, लड़के लड़की का कहीं और रिश्ता भी हुआ, दोनों के माशाल्लाह आप दो दो चार चार बच्चे भी हैं, तो आप अभी भी बैठे हैं उन्हीं बातों को लेकर। सब्र नहीं आता, सुकून नहीं आता, कैसे बोलूं, मेरे तो सीने पे वो तीर चलते हैं, बेकार बात है। इतना वक्त है आपके, इतनी मेमोरी, इससे अच्छा था आप एक सारा याद कर लें, आपकी तो मेमोरी बहुत अच्छी है। जो लोग जिंदगी में पेश आए हुए हादसों और दूसरों के मामलात को ही रगड़ते रहते, नगेतते रहते ना, कह लीजिए वो सफ़ुन पे नहीं पहुंचे हुए, वो अपने आप को भी दुखी करते हैं और दूसरों को। और याद रखिए, एक बात सुनने का एक वक्त होता है। कुरान पाक में ये सख्त लफ्ज़ जो है ना, ये 8 दफ़ा आया, 7 मुख्तलिफ आयतों में, एक आयत में 2 बार भी आया, कहीं वसफ़हु, कहीं वसफ़ख़, कहीं फसफहे सब्रल जमील जैसे भी कर रहे हैं। और इसी तरह से अबू बकर सिद्दीक का जो वाक़ा भी हमने पढ़ा और सुनी, आयत आयत 22 सूरत नूर, उसमें भी आता है वलजाफ वलजसफहु, और इसी तरह से। तो इसको ज़रा सा समझ लीजिए कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। आपने नोट किया होगा, पुरानी बात चाहे 10 साल बाद भी शुरू करे ना, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं इसको अब आपको समझाना चाहती हूँ, अल्लाह करे मैं समझ जाऊँ और समझा लूँ। कुछ लोगों से आप जब बात करेंगे ना, रिकाउंसलिंग की, रीसेटिंग की, रिहैबिटेशन की, वो कहते हैं पिछली बातें निकालो पहले। हुआ कभी आपके साथ ऐसा? ये सफ़ोन में ये है कि अल्लाह के वास्ते पिछली बातें छोड़ दो, ये है ये जुमला। क्यों पिछले मुर्दे उखेड़ते हो, इसको लिख लीजिए, गड़े मुर्दे ना उखेड़ो। सफ़ोन क्या होता है कि आप खुद भी आगे चलें और अगले को भी दावत दीजिए। आप देखिए, बाज़ दफ़ा इंसान अफ में दरगुजर कर लेता है, लेकिन सफ़ुन से काम नहीं लेता। यानी किसी से इस कदर दरगुजर करना, किसे मुजरिम ही ना गर्दाना जाए। लिखिएगा, इतना खूबसूरत असूल आपको इस आयत से समझ आने वाला है ना, कि आप झूम जाएंगे। जैसे चाय का कप पीने के बाद तबीयत फ्रेश होती है ना, मेरी तो इन लफ्ज़ों से फ्रेश होती है। यानी बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप फॉरगिव तो करते हैं, फॉरगेट नहीं हो पाता। अफ़ुन के बाद जब सफ़ुन होता है ना, तो इसका मोटा मोटा लफ्ज़ लिखिए, यानी इग्नोर ग्रेसफुली लिख लीजिए, बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। किसी से इस कदर दरगुजर करना, किसे मुजरिम ही ना गर्दाना जाए, उसको गिल्ट में ना डालो, ये मुराद है। क्योंकि असल में प्रॉब्लम भी यही है कि फॉरगिव तो करते हैं, फॉरगेट नहीं करते। ये जो लफ्ज़ है ना सफ़ुन, ये फॉरगेटनेस है। हालांकि देखने में हमें ये माफ़ी लग रही है, लेकिन ये फॉरगेटनेस है, ये खुद को माफ़ करना। अल्लाह के नबी की बहुत प्यारी हदीस है, ईमान की शाखें बयान होती हैं, और उसमें एक रिवायत में आता है कि किसी के रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना, यानी कांटा, इमातुल अज़ा यानी तरीक, ये भी ईमान की निशानी। यानी हमारा दीन तो रास्ते से कांटे को हटाने को भी ईमान की निशानी लाता है। बात वैसे, आप जा रहे थे, आपके रास्ते में कुछ कांटा आ गया, आपको चुबा या चुपते चुपते बचा, अब आप तो बच गए, आप कहते नहीं वापस आऊँ 2 कदम पीछे, और फलां भी आएगा, कोई आएगा उसको भी चुभेगा, आप उस कांटे को वहां से उठा कर ना 7 फूलों की क्यारी उसमें डाल देते हैं। फरमाया, अगर किसी को ऐसा काम करते भी देख लो तो मान लो कि ये ईमान वाला है, चाहे वो ईमान की एक छोटी शाखी सही। तो जिस तरह बाहर के कांटे होते हैं ना, इसी तरह अंदर के भी कांटे होते हैं। और गिल्ट, किसी को गिल्टी फील कराना, किसी को कहना तुम हो जिसकी वजह से मैं दीन का काम छोड़ रही हूँ, ये तुम हो जिसकी वजह से मैं नहीं चल पा रही, या कोई आपके बारे में सोचने लग जाए, इनके होते हुए मैंने नहीं दीन का काम कुछ कर सकना, ये रूल्स बड़े बताती हैं, ये सवाल जवाब बड़े पूछती हैं। लिखिएगा, अगर ये सारे जज्बे हमारे नेगेटिविटी फैलाने वालों और शर फैलाने वालों के लिए होंगे तो ये इंशाल्लाह आपका अजर है, आपकी गैरत है जो गलत चीज़ के ऊपर कुड़ते हुए हो रही है, लेकिन नेकियों के सफ़र में करने कराने में ये बातें अपने जैसे लोगों के लिए पेश करना, ये खुद को हलाक करना है। अफसोस की बात है, घर से निकलते हम दीन का काम करने के इरादों से, अभी हम अंडर ट्रेनिंग है, अभी हम सीख रहे हैं, हमें आ क्या क्या सब कुछ, जरा सी कोई तनकीद कर दे बस मरने मारने पे टाइम, ये नहीं चाहिए कोई और दे दे, टीचर बदल लें फिर हम आ जाएंगे, और एडमिन बदल लें फिर हम आ जाएंगे, और ये फुलां ना हुआ तो हम काम करेंगे, फुलां की मौजूदगी में तो मैं ऐसा भड़केंगे कि पता नहीं ब्लड प्रेशर ही ना हमारा तेज हो जाए, इनको देख के आग लग जाती है, इनको पहले गेट आउट करें यहाँ से, ला लवला कुवते लवला, मैंने खुद भी बोला तो मेरा भी दिमाग गर्म हुआ है थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए। याद रखिएगा, किसी को गिल्ट में ना डालें, गिल्ट एक ऐसा कांटा है जो अंदर का कांटा है, अंदर से चुभेगा और उस बंदे की रूह को जख्मी कर देगा। वाकई लोगों ने आपसे बुरा किया, मैं मिसाल फिर यहाँ हजरत यूसुफ की देना पसंद करती हूँ, कितने सालों के बाद भाइयों के साथ मुलाकात है, कुछ नहीं बोले, दोबारा आए सदका खैरात लेने, कुछ ना बोले, जब तीसरी चौथी बार में ये कह दिए कि अब तो फकीर ही हो चुके हैं, पैसे भी नहीं बचे, तो रो ही पड़े कि तुम वो हो, तुमने यूसुफ से क्या किया था। अब उनका शऊर बेदार होता है, ओहो वो यूसुफ जिसको अपने तुकुमों में डाला था, अल्लाह ने उसको मिस्र के तख्त पे बिठाया हुआ है, अब ये था वो वक्त जिस पे यूसुफ सारे बदले लेते, छुक 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 छुक, ये ताना तुमने किया, तुमने तुमने, और यूसुफ हमारी जगह थुड़ दिले होते ना, कहते तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कितने धक्के खिलाए, देखो सारा बचपन माँ बाप की मोहब्बत से दूर रहा, और आजाद इंसान से निकाल कर मुझे गुलाम बना दिया तुमने, मिस्र में रहा, और फिर वो मेरे साथ क्या, और तुम्हारी वजह से मैं इतने साल जेलों में काट के आया हूँ, ये तो अब अल्लाह ने मेरे ऊपर बड़ा फजल किया, नहीं एक लफ्ज़ नहीं बोले। अब टाइम होता तो मैं आपको सूरह यूसुफ का वो हिस्सा पढ़ के सुना दूँ, यकीन कर लीजिए कि ये है उसमें, क्या कहा, नहीं, तुम बुरे नहीं थे, शैतान था जिसने तुम्हारे हमारे दिल में डाल दिया। इसको कहते हैं विन विन, सेवन हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल का राइटर कहता है विन विन, तुम भी जीतो हम भी जीते, ये है सफ़र। अपने मुखालिफ को आप गिल्ट में डाल देंगे ना, कभी उसके साथ आपकी बात फिर नहीं बनेगी, काट के रख दीजिए। हद तक अल्लाह के नबी का दौर है, एक सहाबी हैं, नहीं बनी, तलाक दे दी, कुछ अर्सा गुजर गया, कोई और शख्स मिले, भाई बताना आजकल शादी करनी है, कोई नेक खातून हो नज़र में तो मैं शादी करना चाहता हूँ, अच्छा वो फलां उनसे कर लीजिए, अच्छी खातून है, कब वो, अरे मैंने सुना है वो तो आपके एक्स वाइफ है, उन्होंने बेचारों ने कैसे बात की होगी, आई डोंट नो, कहा बात सुनो मेरी उसके साथ नहीं बनी लेकिन है वो अच्छी औरत, ये है सफ़हन, फस फखे सफुल जमील, जाके खुद ही उन्हीं बच्चे बच्चियों के रिश्ते करा दीजिए जिनको आपने छोड़ा, कि या हम उनके काबिल नहीं थे या वो हमारे काबिल नहीं थे, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, इंशाल्लाह आप जाइए। तो याद रखिए, मुखालिफ को शर्मिंदा करके उससे मोहब्बत नहीं मिलती, हम ऐसे वक्तों में सब अगले पिछले जहर उगलते हैं, कहते हैं सारी जिंदगी का आप सब्र, आज देखना मैं क्या करती हूँ, हालांकि फिर हम कहते हैं मोहब्बत करें, जिनको आप जीतना चाहते हैं ना, रिश्ते खून के, ससुराल के, बच्चों के, दीन के, उनके लिए आप इतने बेजरर बन जाएं कि उसको एहसास तक ना दिलाएं, इतना उनको फील कराएं, क्योंकि हम किसी की शख्सियत मजरूह कर चुके होते हैं बाज़ दफ़ा अपने कड़वे जुमलों से, वापस लाइए, उनका कॉन्फिडेंस डिवेलप कीजिए, किसी की ज़ुबान की सख्ती है मान लेती हूँ लेकिन काबिलियत बहुत है, तो क्या सिर्फ आप उनकी ज़ुबान की सख्ती की वजह से उनकी काबिलियत से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, गलत करते हैं आप। देखिए आपका मुखालिफ एक आईना है, कल के सबक में बता चुकी हूँ, वो जो आपकी कमियां बताता है वो तो दोस्त भी नहीं बताते, अपने मुखालिफिन की कमेंट्स की कदर कीजिए, वो आपको जो फीडबैक दें चाहे जहर में बुझा हुआ दें उसको फौरन पढ़िए, दोस्तों की तारीफें बाद में पढ़िएगा, वजह क्योंकि वो बड़ा सच्चा है आपको अंदर से खोल कर दिखाने में, तो बात समझ गए, सफ़हन, जिम्मेदारियां कबूल कीजिए। तो जिंदगी में अगर कहीं साथ काम करने के दौरान भी कोई गड़बड़ हो गई, किसी तरह मिल बैठिए, किसी तरह, क्यों कि जो मर जाता है ना उस पर सब्र आ जाता है, लेकिन जो गुम जाता है, जो चोरी हो जाता है, उस पर सब्र नहीं आता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसकी बेहतरीन मिसाल थे, सारी ज़िंदगी बच्चों को नहीं काटा कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मारा गया, बकौल उनके तुम्हारे चुका था ना, और देखिए फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन बेटे वापस मिलते हैं याकूब को। याद रखिए झगड़ों लड़ाइयों के बाद जो सुलह होती बड़ी मीठी होती है। ये भी मैंने बचपन में जुमला बड़े करीब से सुना किसी से कि लड़ाई के बाद जो सुलह होती है ना वो बड़ी मीठी है। कोई मियाँ बीवी का झगड़ा था, घर टूटने के करीब था, उन खानदान के लोगों ने कहा एक कोशिश और कर लेते हैं। वो भी आए वो भी आए, बीच में 2-4 महीने से जो चपलस थी उसमें लड़के लड़की या औरत मर्द को समझ आ चुकी थी कि गड़बड़ हो गई तो मसले बड़े बनने हैं। खैर वो बड़ों ने बीच में पड़पड़ा के बराबरी में सुलह कराई। बाद में वो इतना मोहब्बत वाला जोड़ा, वो खुद कहते थे कि हम पे ये सच है कि लड़ाई के बाद सुलह ज्यादा अच्छी होती है। तो कभी कभी शौहर बीवी की लड़ाई अल्लाह इसलिए भी करवा देता है कि इसके बाद फिर वो एक दूसरे से ज्यादा ही सारे मोहब्बत करें। जिंदगी में पॉजिटिव रहिए और मुझे नेगेटिव थिंकर्स के साथ तो एक मिनट नहीं गुजारना। ये मैं अपने दिल की बात बताती हूँ। अनपढ़ के साथ गुजारने को पसंद करती हूँ, कह लीजिए कि जिसको कपड़े भी नहीं पहनने का सलीका, मैं उसके साथ भी बैठने को तैयार हूँ, बात करने का सलीका नहीं, लेकिन नेगेटिव माइंड लोगों के साथ कभी ना बैठे, वो आपको भी अल्लाह से भी दूर कर देंगे। चलिए तीसरे लफ्ज़ पे चलते हैं, गफरान, गफरा से। आपके लिए इस रूट से जो आयत चूज़ की गई है आप उसको भी देख लीजिए। वली मन सबरा व गफरा इन नज़ालिक लमिन अज़्मिल उमूर। और जो सब्र करे और कसूर माफ़ कर दे तो ये हिम्मत के काम है। सूरत शुरा की आयत नंबर 43 है। आप देखिए कुरान पे वाकई जो प्यार आता है वो क्या किसी न्यू बॉर्न बेबी पे प्यार आता होगा, शर्त है कि आपको इसका ये लफ्ज़ समझ आए। तो लफ्ज़ गफरा को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या छुपा है। और सबसे मारूफ लफ्ज़ मुआफ़ी के लिए जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है वो यही है। इसी से अल्लाह ताला का नाम अल गफूर है, अल गफ्फार है। मगफरत का लफ्ज़ इसी से है जो उर्दू में भी हम बोलते हैं, हालांकि अरबी का लफ्ज़ है। और गफरा, मेगफर, छुपाना, किसी चीज़ को हाइड करना होता है। मेगफर हेलमेट को कहते हैं अरबी में, क्योंकि वो सर को छुपा लेता है। तो अब मगफरत क्या है ज़रा सा इसको देखिए। अफ क्या था, निशान भी मिटा दो। मगफरत क्या है कि है सब कुछ ऊपर चादर डाल दो। लिफाफ होनी मैं इतना डिटेल से बता चुकी हूँ कि मैं आपको भी कहूँगी, उसमें गफरा और अफ का मानी इतने डिटेल से और अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल तरीके से हमने देखा था कि जब वहाँ से भी लोग उठे थे तो उन्होंने आकर इस बात की गवाही दी थी। आज समझ आया कि अल्लाह मइन्ना कफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा क्यों कहा गया, ये क्यों नहीं कहा गया अल्लाह मग़फ़िर और अंतो तुहिब्बुल गफ़रान और इस तरह की बातें, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई लफ्ज़ इधर से उधर नहीं। और ये जो आयत वायत है ना, इसमें मैं मुतरादिफ़ लफ्ज़ भी बताती हूँ अल्लाह की तौफीक से, जो मेरा बड़ा पुराना ख्वाब था कि हमने एक ही लफ्ज़ के लिए अरबी में जो मुख्तलिफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं अल्लाह ताला ने, उसका फ़र्क देखते हैं कि आखिर क्यों, ये फ़र्क क्या है। तो बहरहाल मग़फ़रत या गफ़रान, देखिए सारे निशान आप नहीं मिटा सकते, आपके इस पर रबड़ी नहीं है जिसमें से आप मिटाएं। आपके आगे पेन का निशान है, पेंसिल का नहीं है। और कल से जब से इस टॉपिक का जहन तैयार कर रही ना, तो मुझे अब वो भी एक सेशन याद आ रहा है, पेंसिल का सबक। पता नहीं है कि नहीं किसी की अप्रोच में, लेकिन मुझे याद है, मैं उस पर एक अलग सेशन भी देने को तैयार हूँ। लेकिन पेंसिल से ये सबक सीखिए कि यू कैन अरेज योर मिस्टेक्स। रबड़ बन जाएंगे तो पेंसिल के निशान तो मिट जाएंगे, पेन के नहीं मिटते। तो बास दफ़ा ज़िंदगी में, अब सुनिएगा गफ़रा को सुनकर आप दिल ठंडा कर लीजिए, बास जख्म ऐसे होते हैं वाकई अफ नहीं होता, क्या करें, पड़ा हुआ सामने वही मिसाल बॉल पॉइंट का निशान। तो फिर इन रिश्तों में और इन मामलात में एक काम कीजिए, गफ़रा कर दीजिए, सबरा के बाद गफ़रा। या मुझे एक सिस्टर का बड़ा ही दिल को हिलाने वाला जुमला याद है, इसी मौजू पे बात अक्सर रहती है और वहाँ भी थी कि माफ़ कर दीजिए और फॉरगिव फॉरगेट, तो पीछे से एक आवाज़ आई थी क्या उस शख्स को भी माफ़ कर दें जिसकी वजह से ज़िंदगी ज़ाया हो गई। और बात हुई तो पता चला कि शादी करके लाए और छोड़ दिए, ख़त्म। बस उनका इतना ही काम था कि एक बच्ची अब पैदा हो जाए और फिर उस लड़की जब औरत बन जाए, क्या उसको भी माफ़ कर दें जिसकी वजह से ज़िंदगी बर्बाद हुई। मतलब कोई कहता हमारा रिश्ता कराया किसी ने, इतनी बुरी जगह हुआ, हमारे नाम पर ठप्पा लग गया कि मैरिड है, उसको भी माफ़ कर दें, उसको भी कर दें, क्यों? देखिए अरबी में गफरा का लफ्ज़ कुरान पाक में हैरतनाक हद तक आप हैरान होंगे, अफ और सफुन के मुकाबले में कितनी कसरत से इस्तेमाल हुआ है, 234 टाइम्स। 202 आयतें हैं जिसमें आप कह लें कि 32 आयतें, 32 आयात कुरान पाक में ऐसी हैं जिसमें ये लफ्ज़ एक से ज़ायद बार इस्तेमाल हुआ है, यानी 2 बार इस्तेमाल हुआ है। तो ये है वो कसरत से किया जाने वाला काम। आप किसी की पूरी मदद नहीं कर सकते ना, तो थोड़ी तो कर दीजिए। किसी को ऐसी चीज़ पहना देना जो उसे मैल कुचैल से महफूज रख सके, ये है गफर। माँ बच्चे को खाना खिलाते हुए आगे बिब बांध देती है, प्लास्टिक का कपड़ा लगा देती है, ये चीज़ है। अरब लोग कहा करते हैं, फिर सऊ बकफिल भी आई, अपने कपड़ों को संदूक वगैरह में डालकर छुपा दो, खुले कपड़े लटकते रहते हैं तो उस पे और मट्टी इकट्ठा पड़ता रहता है। इसी तरह कहते हैं, इस बग सऊब का फ़इन्नहु अग़फ़रुल वसख, कपड़े को रंग लो क्योंकि वो मैल कुचैल को ज़्यादा छुपाने वाला है। यानी सफ़ेद कपड़े पे फ़ौरन धब्बा लगता है, तो अरब लोग कहते थे कि रंगे हुए कपड़े पहनो, यानी डार्क कलर पहनो, क्योंकि उसमें जल्दी से मैल नहीं दिखता। तो फिर मग़फ़िरतुन या गुफरान उनके आता है, अल्लाह अकबर, बंदे को अजाब से बचा लिया। और जब आप इसको सूरह बकरा की आखिरी आयतों में देखते हैं, गुफरान का रब्बना, तो लफ्ज़ गुफरान क्या है? गुफरान का मानी होता है बंदे को अजाब से बचा लिया गया, पूरा लफ्ज़ भी नहीं है फिर गुफरान का, हमें बख्शते, सिर्फ लफ्ज़ है, जुमला नहीं है, ये कह लीजिए। और इसी तरह तो कहा कि सारी विला मग़फ़िरत में रब्बी को, अपने रब की बख्शिश की तरफ बढ़ो। तो क्या पता चला कि गफ़रा में कभी कभी तो ज़ाहरी तौर पर माफ़ करना आता है, ख्वाह दिल से माफ़ ना किया हो, यानी जिसको आप कहते हैं दर गुजर के जाने तो बाद में बात करेंगे जी। और ये लफ्ज़ इतनी ज़्यादा दगा है कि मैं आपको और ना दूँ तो बेहतर है, लेकिन इस वक्त आपने कॉन्टेक्स्ट में आप समझ गए होंगे, कुछ चीज़ों को आप हील अप नहीं कर सकते, तो उसको छुपा दीजिए, अपने भी गुनाह और गैरों के भी गुनाह, ये है मग़फ़रत। अब आपको एक हल्का सा अंदाज़ा हो गया होगा कि माफ़ करना फिर है क्या। माफ़ी तो समझ आ गई, अब चलिए आगे, तो माफ़ करने का असल मतलब क्या है? सो वट डज़ फॉर गिविंग एक्चुअली मीन्स? क्योंकि आप इतना कुछ सुना है ना, तो अब इसको ज़रा सा जमा कर लीजिए इकट्ठा। तो लिखिए, फॉरगिवनेस क्या है? सही रिवायत है मुस्तद अहमद की, 7001, इरहमु तुरहमु, रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, वाग़फ़िरु और माफ़ कर दो क्योंकि यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, ताकि अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर दे। क्या पता चला? बी मर्सीफुल टू अदर्स एंड यू विल रिसीव मर्सी, फॉरगिव अदर्स एंड अल्लाह विल फॉरगिव यू, रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, माफ़ कर दो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें भी बख्श दे। ये करना है माफ़ी, असल में खुद को माफ़ करना है। तो नोट कीजिएगा, माफ़ करने का मतलब है कि इस शख्स के खिलाफ अपने दिल में रंज या नफ़रत महसूस ना करो। बात समझ गए? लिखिए जुमला, लिखा हुआ आपके सामने, आप इसमें से एक लफ्ज़ लिख लें, बाकी बाद में लिख लीजिएगा, फिर बोलूँगी। माफ़ी में वही लफ्ज़ है जो ऑफ में था, अपने दिल में रंज या नफ़रत का महसूस ना करना किसी के लिए, और यही फॉरगिवनेस फॉरगेटनेस में बदलती है। और ये भी नोट कीजिए कि माफ़ी एक तवील अमल है, आपको बार बार करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक बार नहीं। देखिए ना, सफाई एक मुस्तकिल अमल है, आप ये कह सकते हैं पिछले हफ्ते सफाई कर ली थी तो काफ़ी है, आपने कोई भी चीज़ नहीं हिलाई होगी लेकिन मट्टी तो आई होगी ना। तो माफ़ी तवील अमल है, बार बार करना पड़ता है, और माफ़ करने का ये मतलब है कि दिल से उनके लिए कोई तकलीफ़ ना चाहे, ये ना कहा करे अच्छा अल्लाह इनको पूछेगा, अच्छा जी हमने तो इनको छोड़ा अल्लाह पूछे, कभी ना करे। इससे तो बेहतर है आप ही पूछ लें, क्योंकि आप अपने किसी प्यारे को या जिससे अब आपके दिल खट्टे हो चुके हैं, कितना को पूछेंगे, उसको बदनाम कर देंगे, उसको जाके मार कूट आएंगे, ज़्यादा ज़्यादा तो क्या करेंगे, आपको तो पुलिस ले जाएगी अगर आपने उस पर कोई और ही बुराई की तो। लेकिन अल्लाह जब पकड़ने पर आता है तो बहुत बुरा पकड़ता है। कभी अपने किसी प्यारे के लिए ये जुमला ना बोले कि मेरा मामला अल्लाह पे, अल्लाह पूछे, अल्लाह कभी ना पूछे ये कहा करे, क्योंकि अगर आपने उनको पुछवा लिया तो कोई आपको पुछवाएगा तो आपकी भी चीखें निकल जाएंगी। दिल से कोई तकलीफ ना चाहें, दिल साफ रखिए, खैर ख्वाही रखें, लेकिन फिर से धोखा ना खाएं। बात समझ गए? आपके दिल में कोई बुराई नहीं, कोई रंज नहीं है, दिल धुल चुका है, दिल साफ हो चुका, खैर ख्वाह हैं, दुआओं में शामिल रखिए, तोहफे तहाइफ में शामिल रखिए, अच्छे जुमलों में याद रखिए, उनकी पिछली नेकियों को याद रखिए, लेकिन फिर से धोखा ना खाएं। क्यों? आगे एक हदीस आपके साथ शेयर करती हूँ अभी इंशाल्लाह। पहले एक और सवाल, क्योंकि मौजू पूरा हो जाए तो बेहतर है, बीच में एक्स्ट्रा बातें बाद में देखते हैं। हाउ टू फॉरगिव, कैसे माफ़ करूँ? ये भी एक बड़ा कॉमन सवाल है, समझ ही नहीं आता। लड़ाई करने वक्त कोई नहीं पूछता कैसे लड़ूँ, फिर तो खूब बोल बाल के आते हैं, ऐसा उबाल निकालते हैं, कहते मैंने दिल हल्का किया, उसका आपने भारी कर दिया। भाई मैंने अपना दिल साफ किया तो उसका दिल आपने मैला कर दिया। तो स्टेप्स लिखिएगा, स्टेप्स ऑफ फॉरगिवनेस व्हेन इट फील्स इम्पॉसिबल, मुआफ़ी के इकदामात जबकि ये नामुमकिन महसूस हो। रियली इट्स वेरी हार्ड, यानी कह लीजिए जुए शीर लाना आसान है, 100 नफिल पढ़ना आसान है, 60 रोज़े रखना आसान है, पर किसी एक ऐसे को माफ़ करना बड़ा मुश्किल है जिसको माफ़ करने को दिल ना चाहे। क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करते कि मैंने जुमला बोला ये सच है? हम सब से जीत आते हैं, खुद से हार जाते हैं, बहुत मुश्किल है, अब क्या करें सारी ज़िंदगी। तो उसके लिए फिर कुछ टिप्स लीजिए, किसके लिए दूसरे को माफ़ करना आसान होता है? नंबर एक, जिसका दिल कल्बे सलीम हो, दुनिया के बोझ से पाक दिल वाले के लिए, साउंड हार्ट, अ हार्ट फ्री ऑफ बर्डन्स ऑफ दुनिया। जिस बंदे का दिल सलामत है ना, और कल्बे सलीम क्या, अभी एक अपनी जगह कहानी है, मैं एक ही बता देती हूँ क्योंकि आजकल डिक्शनरी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ। कल्बे सलीम में जो लफ्ज़ सलीम है ना, कल्ब तो कहते बदलने वाली चीज, इनकलाब लफ्ज़ भी से, और अरबी ज़बान में आपको तो दिल के लिए कल्ब आया, नफ्स आया, फुआद आया, लेकिन कल्ब कहते हैं दिल के अंदर की जज्बात जो उलटते पुलटते, इनकलाब आना, इसी से सलीम फ़ईल के वजन पे जब आता है तो सांप के डसे हुए शख्स को सलीम कहते हैं। अब ये सांप कहाँ से आ गया, हम तो बड़े पीसफुल हार्ट के लिए थे, तो जिसको सांप डस लेता है ना, अल्लाह ना करे कभी किसी को डसे, और अल्लाह ताला हमें बचाए कि अल्लाह मैंने आउज़ु बिका ना मूतु लदीगा, हदीस की दुआ है कि अल्लाह डसे जाने से ना महरूम है। तो फिर यहाँ कल्बे सलीम में ये क्या आया, तो जब सांप डसता है ना तो वो बंदा तड़पता है, तो कल्बे सलीम है तड़पने वाला दिल। किस चीज़ की तड़प है? फल अल्लाह कबाख नफ्स कला सारिहिम इल्लम यूमिनो बिहाज़ल हदीसी असफ़ा या हाज़ल हदीसी असफ़ा। जब आपका दिल दूसरों के लिए तड़पने वाला होता है ना, तो आप कभी किसी को माफ़ करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वैसे देखिए माँ है, कभी माँ जानते बूझते बच्चे को माफ़ करने से दूर रहती है? माँ तो कहेगी मेरा बच्चा मेरे से जो मर्जी कर दे, अल्लाह तू इसके साथ अच्छा ही करना। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, दिल के अंदर ये एहसास रखिए, अगर मैंने फलां को माफ़ ना किया और वो मर गया तो कंदरा पे जाके मामले खुलने हैं, और पता नहीं सिर्फ मेरे साथ उसके मामले की वजह से वो जन्नत से महरूम हो जाए, तो क्या मैं ये चाहूँगी? और मोमिन तो दूसरे के लिए वही चाहता है जो अपने लिए चाहता है। तो फिर आप अपने दिल को पाक करें, और जितना दिल सलामत होता जाता है ना, दुनियादारियों से, दुनिया की बातों से, तारीफ से, तनकीद से बेनियाज होता जाता है। आप कहते हैं मेरे साथ क्यों, क्यों मेरे पे तनकीद क्यों करते हैं, ये मेरी हर बात पे टोक टोक क्यों करते हैं, रोक टोक क्यों? हमें तो तारीफें अच्छी लगती हैं, ये तनकीद कर रहे हैं, हमने अपने हिसाब से काम शुरू कर दिया, बस इसको लेके चल पड़े, अच्छे ही है ना दूसरों से तो अच्छे, आधा तर्जमे ही सुनते हैं, सुनते तो है ना। आप ये ग्रुप लीडर्स को क्यों इतना डांटते हैं जी, क्या आप पूरा तर्जमा सुने? मिसाल दे रही हूँ क्योंकि हमारा सबका ताल्लुक डिफरेंट फील्ड से है ना, तो उसमें एक इल्मी चीज़ें भी हैं, और ये तो सेशंस हैं ही सारे अंसारुल्लाह और मुंतजमीन के लिए। जब कभी आपके किसी काम पे तनकीद हो, तो नंबर एक, तनकीद के जवाब में मुहासबा लिखिए, कहने वाला जो कह रहा है वो सच है कि नहीं, अपना मुहासबा तो कीजिए, कंपेयर कीजिए दूसरों के साथ। मसलन अगर आप रोटी पकाती हैं और आपकी रोटी के ऊपर कोई तनकीद करता है, जी सख्त है, काली है, खुश्क है या कच्ची है, आप गुस्सा, एक तो रोटी पकाई ऊपर से आप तनकीद कर रहे हैं, आप जरा किसी दो चार और खवातीन की भी रोटी देखिए, उनकी रोटी कैसे है? मुहासबा, तनकीद के जवाब में मुहासबा करने वाले दूसरों के लिए दिल में ग्रज नहीं लाते। हाँ जी, हम पे तनकीद हुई और तनकीद हुई तो हम तो डीमोटिवेटेड गए, क्यों भाई आप गुब्बारे हैं, एक सुराख कर दें तो आपकी सारी हवा निकल गई, इसका मतलब आपके अंदर अपना सेल्फ मोटिवेशन ही नहीं है, और मोटिवेशन तो ईमान से आता है। तो लिहाजा अगर किसी के मुंह से आपकी कोई बात आए तो गौर कीजिए, मुहासबा करें। दूसरी बात है, अगर आपको उस मुहासबे के नतीजे में अपनी कोई कमी बेशी नजर आई, दूर कीजिए, नहीं आता तरबियत लीजिए, नहीं कर सकते पूरी कोशिशों के बाद मदद लीजिए कि आप प्लीज़ हमें प्लान कर दीजिए, हम करने को तैयार हैं, क्योंकि वाकई कुछ लोगों का ये इशू होता है, उनको ये नहीं समझ आता कि करें क्या, ये समझ आता है कि इन कपड़ों के साथ जूता कैसा चाहिए, ज्वेलरी कैसी चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, इस पे दिन चलता है, दीन पे नहीं चलता, क्योंकि अंदर वो सलीमियत वाली कैफियत नहीं। बहरहाल फिर अगली बात देखिए, कुरान और सुन्नत की पैरवी, हमारे दीन ने कितना ज़्यादा इस पे फोकस किया, आप खुद देख रहे हैं, अभी तो एक अबू बकर सिद्दीक की बात समझी ना शुरू में, तारीख भरी पड़ी है फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटनेस की बातों से, और जितना अपनी ज़िंदगी को कुरान सुन्नत के साथ साथ रखेंगे ना, अल्लाह आपको फिर एक मेयार भी दे देता है। जब हज़रत यूसुफ ने माफ़ कर दिया, जब अबू बकर सिद्दीक ने माफ़ कर दिया, और जब आप देखिए कि मूसा ने माफ़ कर दिया, किस किस ने माफ़ नहीं किया, तो मैं क्यों ना करूं। और एक और चीज़ लिख लीजिए, जब आपका दिल ही नहीं कर रहा किसी को माफ़ करने पे, इट्स इम्पॉसिबल कि आई कैन फॉरगिव हर और हिम, तो फिर लिख लीजिए ज़िंदगी को एक आजमाइश समझें, कंसिडर लाइफ इज़ द कॉन्स्टेंट टेस्ट। तो ये आपका इम्तिहान है, और यकीन कीजिए आपको सब्र का मौका देने वाले आपके मुहसिन हैं, आपको बुरा भला कहने वाले आपके मुहसिन हैं। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका पे तोहमत लगी, तो 1 महीने का सब्र नहीं किया आयशा ने, तो क्या आयशा रजी अल्लाह अन्हा का ये सब्र इस सूरत में नहीं ढला कि खुद फख्र करती थी कि मेरी शान में कुरान में इतनी आयतें नाजिल हुई। फिर क्या करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए कि इसके कुछ मजीद टिप्स ले लीजिए, स्टेप्स ऑफ फॉरगिवनेस व्हेन इट फील्स इम्पॉसिबल। जब किसी को दिल ना करे माफ़ करने को तो क्या करें। तो पहली बात तो देखिए कि वो जो इंसिडेंट था ना, जो भी हुआ उसको याद कीजिए, जहन में दोहराएं, अपने आप को माजी में ले जाइए, थोड़ा सा पीछे जाएं, ऐसा हुआ था, अच्छा ये हुआ था, फिर आवाज़ें ऊँची हुई, फिर गुस्सा आया, आप खुद को उधर ले जाएं और फौरन चेक करें, अगर मैं क्या ना करती तो बात इस हद तक ना जाती, या मैं उसी वक्त कुछ कर लेती ना तो ये काम इस जगह तक ना पहुंचता। और ये अमूमन होता है तलाक लेने देने के बाद, मैं यकीन से कह सकती हूँ, जब घर टूट चुके होते हैं ना, तो फिर बंदा उसको जोड़ने के लिए तड़पता है, जैसे जुड़े हुए घर को उस वक्त एक तड़प थी कि इसको तोड़ना है, इल्ला माशाल्लाह। ये वर्स मिसाल दे दी है, इसको आप छोटे लेवल पे भी ले लेंगे तो ज़रा कम समझ आएगी, इससे समझ जल्दी आ गई है इसलिए बोल दिया। अपने आप को माजी में ले जाइए, ये आपको टिप्स मिल रही हैं, बहुत बड़ी टिप्स हैं, यकीन कीजिए ये कोर्सेज, ये लाइफ कोचिंग के कोर्सेज हैं, ये $500 देकर लोग जाकर कोर्सेज करते हैं, ताकि खुदा के लिए हमें इस गम से निकाल दें कि हमने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की या किसी ने हमारी किया, अब इससे निकल कर कोई पॉजिटिव काम करें। फिर इसी तरह आप देखिए, बिगिन टू पिक्चर योर लाइफ विदाउट होल्डिंग ऑन दैट एंगर एंड हर्ट, अपनी ज़िंदगी की तस्वीर बनाना शुरू करें, कभी भी गम और गुस्से को थामे बगैर, बी रिलैक्स्ड, गुस्सा एक तरफ रखिए, गम एक तरफ रखिए, अब बनाइए अपनी ज़िंदगी की पिक्चर, क्योंकि आपको पता है कि गम और दुख के वक्त में इसीलिए कोई फैसले नहीं करने का हुक्म। आप कहते हैं जी गम में ये किया था, दुख में किया, गुस्से में तलाक दे दी, तो कोई मोहब्बत में भी तलाक देता किसी को। तो ज़िंदगी को इमोशन से हटाकर अपनी लाइफ को लिखें, यानी इसी वक्त ही आप लीजिए कि आप कहते हैं मैं नहीं माफ़ करूंगी फलां को, गुस्सा बहुत है। चलिए मैं एक मिसाल देती हूँ, आप शोहर बीवी की ना दूँ ज़्यादा तो बेहतर है, कोई भी काम ले लीजिए, आप मिल के काम करते हैं कहीं भी, उसमें कभी ऊंच कभी नीच, कभी ठंडी ठंडी कभी गर्म गर्म बातें, कभी रात कभी सुबह हुई, आप डिसाइड करते हैं दैट्स ओके, एनफ इज एनफ, मेरे से रोज़ की बातें नहीं सुनी जाती, मैं इतनी तनकीद नहीं सुन सकती, मैं इतने प्रेशर में नहीं आ सकती, मैं इतनी उम्मीद, मैं अलग होके बैठ रही हूँ, मैं अपना पार्ट लाइफ का खुद बनाऊंगी। यकीन करें नाकाम लोगों में से 98% ये नतीजा निकालते हैं तो नाकाम होते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस मेरे सामने नहीं है इस वक्त, पहले नहीं थी जहन में, वरना लिखवा देती आपके लिए, लेकिन यकीन कर लीजिए, आपने फरमाया इंसानों की ज़िंदगी में, यानी ये जो बात अभी की है ना, कि हम अपनी ज़िंदगी में बास दफ़ा ये सोच लेते हैं कि मैं अकेली अच्छी, दूसरों में नहीं रहूँगी, तो वो हदीस याद कर लीजिए, आपने फरमाया वो मोमिन जो दूसरों में घुला मिला रहे, उनके साथ ही रहे, फिर उस पे आने वाली तकलीफ़ों और मुसीबतों पे सब्र करे, उस मोमिन से बेहतर है जो अकेला रहे। ये बिल्कुल सही हदीस है, लफ्ज़ मेरे हैं, इसको नोट ना करें, रेफरेंस हल्का सा दे दीजिए कि हदीस से बात पता भी चलती है, रिवायत लिख लीजिए, रिवायत से पता चलता है कि दूसरों में रहना, साथ प्रेशर को बर्दाश्त करना, और उनके क्यों साथ रहने से जो चीज़ निखर के आती है, सुभान अल्लाह, आप अकेले अपनी अकल से दो चार चीज़ें लिख के लोगों को दिखाएं, 10 गलतियां निकलेंगी उसमें, तो अगर मेरी गलतियों को कोई बदल दे, कोई उसमें उर्दू डाल दे, कोई उसमें इंग्लिश डाल दे, कोई सीधी चीज़ को किसी ऐसे रंग में कर दे, तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है या परेशान होना है कि मैं खुद ही कर लूँगी जो आपको आता है। टीम ना बनने में, और याद रखिए बहुत सारी अच्छी टीचर्स जो इदारों में नहीं बदल सकी ना, उसकी पीछे वजह ये थी, दे आर गुड टीचर्स बट दे आर नॉट गुड मैनेजर। तो ज़िंदगी में ये असूल रखिए, मुझे लताड़ लो, मुझे जो मर्जी कह लो, लेकिन काम अच्छा हो जाए, मैं दीन में खाद बनूंगी, मेरे सारे काम को क्रॉप कर दो, कट 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 कट, मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि वन न लई सलील इंसान इल्ला मासा। मैंने वो बना के दिया तभी तो आपने उसमें से और आइडियाज लेकर उसको अच्छा किया। मेरा बुनियाद में चला गया, आपका फ्रंट में दिख रहा है, नाम तो किसी का भी नहीं लिखा। यकीन कीजिए नूरुल कुरान प्लेटफॉर्म में जो अल्लाह की बरकत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो सब महसूस करते हैं जो अपने दिल से इस प्लेटफॉर्म को अपना मैका कहते हैं। उसमें एक वजह ये है, किसी का नाम नहीं है, पीछे भी बता चुकी हूँ कि मेरा नाम सिर्फ गैरों के लिए होता है, आपके लिए बिल्कुल नहीं होता। और जो वेबसाइट हो या कोई लोगो, तो ये लोगों का अगला रास्ता दिखाने के लिए होता है कि इस बात के अलावा कुछ और मिल सकता है, आप और भी कुछ सीख सकते हैं, वो ये वेबसाइट ले लेते हैं। दैट्स इट, मेड बाय फलां बाय, शेयर्ड बाय फलाना फलाना फलाना, ख़त्म कीजिए। तो सारी बात का वापस आइए, बगैर गम दुख के क्या होगा। मसलन देखिए, मैं एक सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, आज तक आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मैं तो दिन रात माशाल्लाह ऐसे खुशबख्त लोगों में होती हूँ जहनी तौर पे भी, कि जिनकी कोशिशें होती हैं बेहतर से बेहतरीन और दी बेस्ट, इतने आपको गम होते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कुछ लोगों को देख कर कि इतने गम में इनको, पता नहीं बच्चों का मुंह भी सही तरह धोया कि नहीं, उनके कपड़े भी मौसम के मुताबिक पहने हैं नहीं, खाना भी कोई दो चार अच्छी चीज़ें बनाई हैं नहीं, इनको इतने गम है कि हमने मेयार को नीचे नहीं गिरने देना, क्वालिटी को डाउन नहीं होने देना, हमने आने वाले दौर को सामने रख के काम करना है। खुदा न खास्ता उनमें से एक छोड़ के बैठ जाए। अब आज तक तो मैसेज आ रहा जा रहा, ये कर लो वो कर लो, इधर चलते हैं ये दर्स उधर, 10 चीज़ें, यानी तेज ट्रेन की तरह की ज़िंदगी होती है माशाल्लाह काम वालों की। और कल आप फारिग बैठे, आप सारा दिन इंतज़ार करेंगे कोई मैसेज आए, कैसे आए, आप कह चुके हैं मैंने नहीं काम करना, फिर आप बैठ कर तनकीद करें, सोचें ये अच्छा नहीं कर रहे, देख नहीं देखा ये क्या कर, तो आप वापस आइए बिस्मिल्लाह कि नहीं भाई मैंने अकेले होके देख लिया, मैं फारिग नहीं रह सकती, देर से ज्वाइन करें। पहले डब्बे में नहीं होंगे ना, देखिएगा ट्रेन के आखिरी में जंप लगा कर आप पहुंच ही जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी में कभी अलग ना हो, ये ज़िंदगी का असूल है। और घरों पे मिसाल जो मैं अक्सर देती हूँ, तो मेरा ये जुमला लिख लीजिए, घर टूटने के लिए नहीं बनते, ख़ास तौर पे जब बच्चा आ जाए। बच्चे का वजूद अल्लाह का एक इशारा है कि आप इस शौहर बीवी को साथ ही रख दें। शौहर गड़बड़ करता है वो ठीक करे, बीवी गड़बड़ करती है ठीक, थोड़ी सा सब्र दोनों करें 1-2 साल, तीसरे साल में बच्चा बाप माँ खुशहाल घराना होगा। हम अपनी तबीयत को ना समझ कर सब्र ना करके खुद तो मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन उस बच्चे को हमेशा के लिए गिल्ट में डाल देंगे।